ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहुम्।
यहाँ हम प्रयोजनभूत सात तत्व संबंधी चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा है कि प्रयोजन हमारा सुख है, सुख ने पूर्ण निराकुल दशा, और ऐसी अपनी जो दशा है वो मोक्ष प्राप्त करने में, अपनी ही मोक्ष अवस्था में सुख है, और उसको प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक तत्वों की जानकारी जरूरी है उसको कहते हैं प्रयोजनभूत तत्व। इसको जाने बिना अपना दुख दूर नहीं होगा। इसको जानने से कैसे दुख दूर होगा? तो इसको जानकर अपना स्व तत्व जो जीव तत्व है उसमें लीन होकर आत्मा का अनुभव करने से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है और सुख की शुरुआत हो जाती है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है और वो जितने आत्मलीनता बढ़ेगी उतनी वितरागता और सुख बढ़ेगा, और ऐसी अवस्था प्राप्त होगी मोक्ष अवस्था की जिसमें परिपूर्ण अनंत सुख है। इसके लिए हमने सात तत्वों के नाम देखे थे, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, बंध तत्व, संवर तत्व, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। उसके लक्षण देखने के बाद फिर हमने उस संबंधी जो विपरीत मान्यता कैसी कैसी होती उसकी बात कल की थी। जीव और अजीव की इकट्ठी बात देखी हमने, जीव अजीव तत्व संबंधी जीव की विपरीत मान्यता, क्या सोचता है कि मैं और शरीर मिलकर मैं हूँ, जीव और शरीर मिलकर मैं हूँ, या शरीर ही मैं हूँ, या मैं ही शरीर हूँ, ऐसी उल्टी पुल्टी कुछ न कुछ मान्यता चलती रहती है, उसको कहते हैं जीव तत्व संबंधी और अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता। यानी मैं, यह मैं हूँ और ये सारे बाल बच्चे धन संपत्ति मेरे हैं, इनके कारण मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, मैं जीव में लगा है ना, मैं सुखी मैं दुखी, किस कारण? ये अजीव जो सारे हैं वो मेरे हैं और उनके कारण मैं सुखी दुखी हूँ, ये सारी उसकी जीव अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता क्या देखी हमने, या कि आश्रव क्या है? तो मोह राग द्वेष के परिणाम आश्रव है और उसको करते हुए उसने सुख माना है। आश्रव दुखरूप भाव है और इसने उनको सुख माना है, और आश्रव करते करते संवर होगा, इसे भी विपरीत मान्यता है। पुण्य पाप दोनों भाव ये आश्रव है, उससे बंध ही होता है, परंतु उसने उसको मोक्ष का कारण माना है, संवर का कारण माना है, ये उसके आश्रव संबंधी भूल हुई और संवर संबंधी भी भूल हुई। दोनों में ना, जिसकी एक तत्व में भूल चलती है उसकी सातों तत्वों संबंधी भूल चलती है, फिर भी समझाने के लिए एक एक तत्व की भूल अलग अलग बता रहे हैं। बंध तत्व की भूल क्या हो रही है? उसको उसने पुण्य बंध को अच्छा माना और पाप बंध को खराब माना। क्यों? क्योंकि पुण्य बंध के फल में इसको संयोगों की, जिसको कहते हैं अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होती है। संयोग कोई अनुकूल प्रतिकूल नहीं होते, इसकी उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता ये कल्पना कर लेता है, इष्ट अनिष्टपना इसने मान लिया है, उसके कल्पना में है। तो पुण्य से अनुकूल संयोग मिलते हैं और पाप से प्रतिकूल, तो पुण्य को अच्छा माना, यानी पुण्य बंध को अच्छा माना। जो बंध को अच्छा मान रहा है वो बंध छोड़ने का क्यों प्रयत्न करेगा? तो उसके ये बंध तत्व संबंधी खोटी मान्यता चल रही है। फिर संवर और निर्जरा संबंधी हम बात कर रहे थे। संवर कहते हैं वितरागता की उत्पत्ति होना, तो वितरागता की उत्पत्ति समय दर्शन से होती है, और वो बढ़ते कैसे जाते हैं? तो अंतरंग स्थिरता से। ये जो मुनि दशा है जहाँ प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का वेदन चलता है, तो ये मुनि जीवन को इसने कष्टदायक माना, दुख रूप माना। ये उसकी उन मुनि अवस्था संबंधी इसकी गलत मान्यता है, विपरीत मान्यता है। क्योंकि मुनि अवस्था को या संव निजरा तत्व को तत्व में बताना है, तो मुनि संबंधी गुरु संबंधी जो इसकी मान्यता होनी चाहिए थे, सच्चा गुरु किसे कहना, तो जिनमें इतनी वितरागता है, जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करते हैं, और फिर उनके बाह्य में कैसी दशा होती है उसका भी वर्णन किया जाता है। 28 मूल गुण जो है ना, 5 महाव्रत पालन करते हैं, 5 समिति पूर्वक उनका सब आचरण चलता है आदि जो बातें, 5 इंद्रियों के विजय है, तो इसका जो बाह्य में उनके जो वर्णन किया जाता है ऐसा ही उनका सुमेल रहता है। कोई कहेंगे नहीं हम ये तो बाकी के आवश्यक चीजें नहीं है, हमको ये परिग्रह का त्याग वगैरह कुछ जरूरी नहीं है, और हम परिग्रह को भोगते हुए मुनि बन जाएंगे घर में बैठे बैठे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये मुनि संबंधी जो मुनि जीवन संबंधी जो विपरीत मान्यता है वो सारे संवर निर्जरा तत्व में आ जाते हैं, उस संबंधी इसकी विपरीत मान्यता। इसने शुभराग यानी व्रत और तप करने से निर्जरा मान लिए, संवर मान लिया, तो क्या उससे नहीं होता है? नहीं, उसके साथ व्रत तप के साथ, ये तो बाह्य व्रत की बात है, अंतरंग में जो वीतरागता है वही सच्चा व्रत है और वही सच्चा तप है। विरत होना यानी उससे हटना, किससे हटकर अंतरंग में स्थिर होगा? वो पुण्य पाप दोनों से विरत हुआ, हट गया। संयम की किसको कहना है? सम यानी सम्यक प्रकार, यम यानी उसके जो कोई व्रत नियम होते हैं, सम्यक कब कहेंगे? जब सम्यक दर्शन के साथ हो गए तब। देखो धवला नाम का शास्त्र है, उसमें कहा है कि जिसके सम्यक दर्शन नहीं है और मुनि योग्य जिसने बाह्य में नियम सब अंगीकार किए हैं, उसके द्रव्य यम है, संयम नहीं है। क्योंकि हम कहते ना अरे तुम गृहस्थ हो, वो संयम तो कर रहे हैं ना,
हमसे तो अच्छा है,
हमसे तो अच्छा है ना। तो रत्नगण शावकाचार में श्लोक लिखा है
कि रत्नग्रहण शावकाचार श्लोक 32 क्या 34 दोनों में से
32-33 में है ये बात, कि ऐसे जो मोही मुनि है ना, मोही मुनि है ना क्या, जिनको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ऐसे जो मोही मुनि है उनसे तो गृहस्थ अच्छा है, सम्यक दृष्टि गृहस्थ मोही मुनि से अच्छा है। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, मुझे कुछ बताना था ना, वहाँ लिखा है, आप देख लेना 32-33 नंबर में ऐसा है कि जो मोही यानी जो मिथ्या दृष्टि मुनि है, मुनि के व्रत अंगीकार किए हैं, उससे भी सम्यक दृष्टि श्रावक है, वो उच्च पद विधान उच्च पद में है, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन है, आत्मा का अनुभव है। यानी हमें तो व्रतों की और बाह्य त्याग की महिमा आती है, परंतु उसके कोई मायने नहीं रखता जब तक यहाँ सम्यक दर्शन नहीं होता। अब यहाँ हम संवर तत्व की बातें देख रहे थे, यानी आश्रव को रोकना ये संवर है। विशिष्ट प्रकृति, विशिष्ट प्रकृति का अर्थ है मिथ्यात्व और अनंतता, पहले में पहले उसका बंध का अभाव होगा, यानी जो पहले बंद रही थी, आश्रव हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा। जब सम्यक दर्शन होता है तो मिथ्यात्व संबंधी कुछ प्रकृतियां और अनंतानुबंधी के साथ उसके साथ वाली प्रकृति से 16 और 25 मिलकर 41 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है, उसको कहेंगे हम संवर हुआ। तो इनका बंध का रुकना कैसे संभव है? सम्यक तो हुए बिना मिथ्यात्व का बंध रुकता ही नहीं, अनंतानुबंधी का बंध रुकता ही नहीं। बाकी जो पुण्य पाप प्रकृतियां हैं, वो कभी पाप होता है कभी पुण्य होता है, उसमें तो अंतर्मूर्त के लिए रुक भी सकती है, परंतु उनको हम संवर नहीं कहते। जब मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंध रुक जाएगा, वो कब रुकेगा? जब वैसे भाव नहीं होगे तब। जो जो मिथ्यात्व परिणाम कर रहा है, अनंतानुबंधी परिणाम कर रहा है, उसको उस जाति का कर्म भी बंधेगा, यह इसे रेसिप्रोकल है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम अभी निर्जरा तत्व संबंधी इस जीव की क्या विपरीत मान्यता है उसको देखेंगे।
आपने कहा था आश्रय को रोकने का उसी को हम संवर कहते हैं, तो आश्रय को हम कैसे रोके?
हाँ,
तो वो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि यदि जो अंदर से तो सहज भाव से ये सारे बाहर निकलते हैं आप भाव आश्रम, तो उसको रोकने का जो तो जागृति बिना हो ही नहीं सकता।
देखो आपका ऐसा प्रश्न है, आश्रव का नहीं होना या आश्रव का रुक जाना उसको संवर कहते हैं, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि आश्रव किसको कहेंगे हम, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, और उसको हटने का क्रम भी ऐसा ही, पहले मिथ्यात्व नष्ट होगा, फिर अविरति नष्ट होगी, फिर प्रमाद, फिर कषाय, फिर योग। तो इसका नष्ट करने का उपाय क्या है? तो पहले मिथ्यात्व को त्यजना चाहिए। कैसे त्यजिए? तो यहाँ लिखा है चढ़ाला में, ताको तजिए सुजान, उसको अच्छी तरह से जानकर त्याग करना। अभी जो हमने पांच प्रकार के मिथ्यात्व देखे हैं, वो तो गृहित मिथ्यात्व मुख्यता है, तो उनका तो ये तो जो लोक मूर्ता है, गुरु मूर्ता है, पाखंड मूर्ता है, सच्चे देव कौन है, ये जब हम उनका स्वरूप समझते हैं, तो फिर अभी कुदेव के पीछे हम लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो हमने उसको छोड़ा कहलाए, कि पहले कुछ बीमारी हुई, कुछ नहीं, किसी ने कुछ कह दिया, इसको नारल फोड़ो, वहां जाके ये करो, माथा टेको, वो गुरु तुम्हारे भला कर देगा, तुमको कोई भस्म देगा, तो ये तो मिथ्या मान्यता टल गई ना, ये तो गृहित मिथ्यात्व की बात है। अगृहित मिथ्यात्व में क्या होगा? ये जो सात तत्वों संबंधी विपरीत मान्यता चल रही है, हम इसका ज्ञान करें, हमारे मान्यता में कोई ऐसी बात है कि नहीं, वो पहले टटोले। जैसे हमने पहले गुरुओं को, मुनियों को हमने कष्टदायक जीवन माना था, क्या हम भी मानते थे ना ऐसा? तो हाँ, तो ये बात ये झूठी है, समझ में आया, तो हमारी वो मान्यता टलती जाएगी। यानी पहले में पहले आगम के अभ्यास से सही जानकारी होगी, तो भी अभी संवर नहीं हुआ। जानकारी होने के बाद फिर आत्मानुभूति करने का क्या तरीका है, वो भी आगम में बताया है। कल हमने चार बातें देखी थी। सबसे पहली कंडीशन है सच्चे देव गुरु शास्त्र संबंधी निर्णय होना चाहिए। हमने निर्णय तो कर लिया, पर अभी भी हम सच्चे और झूठे एक साथ नमस्कार करते हैं, तो अभी हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं हुई। वो प्रथम कर्तव्य। दूसरी बात, सात तत्वों की यथार्थ प्रतीति। अभी जो हम सात तत्व देख रहे हैं, विपरीत मान्यता जिसके नहीं रही, और जैसा का वैसा जिसकी मान्यता पहले ज्ञान में लेगा वो। तीसरी बात, स्व पर भेद विज्ञान। बार बार मैं कौन हूं, तो मैं ज्ञान में हूं, ये बाकी सारे है वो मेरे ज्ञेय है, तो अपने को ज्ञान रूप अनुभव करना। कैसे करना? जैसे हम सवे दर्पण के सामने जाते हैं, क्या दिखाई देता है? आपको अपना चेहरा दिखाई देता है और हमें दर्पण दिखाई देता है। अपना चेहरा दिखाने वाला कौन है? वहां दर्पण है। तो हम तो अपने चेहरे को दिखते, हम देखते तो बाहर पीछे हमारे कोई टॉवल होगा, कोई फूल रखे होंगे, सब दिख रहा है। हम कहाँ देख रहे हैं? अपने मुंह की ओर। हमें क्या देखना है? दर्पण को देखना है। देख सकते कि नहीं देख सकते? हम मुख्यतः हम प्रधान करते अपने प्रतिबिंब को, तो अन्य चीजें गौण हो जाती है। दर्पण होते हुए भी हम अपने प्रतिबिंब को ही निहालते रहते हैं। अब हमें दर्पण दिखाई देना है, दर्पण देखना है, तो जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है वही तो दर्पण है। दर्पण कोई अन्य चीज तो है ही नहीं है। और ऐसे भी नहीं कि वो उसी दर्पण को देखना है जहां कोई रिफ्लेक्शन ना हो। आप कहेंगे ऐसा दर्पण हो ही नहीं सकता जिसमें कोई रिफ्लेक्शन ना हो। तो अपने आप को किस तरह से देखना है कि ज्ञान मात्र मैं हूं, इस तरह से देखना है। ज्ञायक, मैं अपने को देखूं तो मैं क्या कर रहा हूं, तो ज्ञायक हूं ना, जानने का कार्य यहां चल रहा है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। ये स्व पर भेद विज्ञान ऐसा होगा। और फिर अपने आप में जो लीनता है, अपने को ज्ञान रूप ही अनुभव ना, फिर उस ज्ञान में ना हमें राग दिखाई देगा, ना परवस्तु दिखाई देगी, ना कुछ दिखाई देगा। जब हम दर्पण को दर्पण की दृष्टि से देखते तो रिफ्लेक्शन गौण हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। दिखाई देते नहीं है, वहां नहीं है क्या? नहीं, उसका लक्ष्य छूट जाता है। ऐसे जब अपने को हम ज्ञान रूप अनुभव करते हैं, देखते रहते हैं, तो उसमें ना हमें राग द्वेष दिखाई देते हैं, तो राग द्वेष मिट गए क्या? जिसको शुद्ध उपयोग कहते हैं, परंतु अभी उसका लक्ष्य छूट गया है। परद्रव्य भी नहीं दिखाई देंगे तो क्या वहां कुछ अन्य चीजें सुनाई नहीं, कुछ नहीं होगा? उसका लक्ष्य नहीं अभी, अभी हम अपने को ज्ञान मात्र अनुभव कर रहे हैं। तो वहां ये जानने का कार्य तो चल रहे है, परंतु अपने को किस रूप में देखना है? ज्ञायक रूप में। तो उसकी बात हम विस्तार से फिर आगे देखेंगे। तो यह स्व स्व में स्व को ही जानते रहना, तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने का यही तरीका है, तब हमारा संवर शुरू हो जाएगा। नहीं तो आश्रव को रोकना यानी राग द्वेष कम करना वो बात है ही नहीं, वो कम हो गए ही नहीं। कम हुआ कब कहेंगे? जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति होगी तो अनंतानुबंधी और मिथ्या तो उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न नहीं होने को नाश किया, उसको रोका, ये कथन पद्धति होती है। हम क्या कहना करना चाहते, पहले हमको रोकना है रोकना है रोकना है, ये रोकने अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रश्न भी पूछेंगे, सम्यक तो नहीं होता तब तक क्या करना, पुण्य करना कि नहीं करना? अभी किसने मना किया है? अब ये जो हम सोच रहे हैं, सच्चे देव गुरु शास्त्र का निर्णय, सात तत्वों का अभ्यास, स्वप्रभेद विज्ञान, और स्व के पहले विकल्प दशा होगी, बाद में स्व का अनुभव होगा। अनुभव काल वो शुद्धोपयोग है, उसके पहले की ये जो सारी बातें हैं वो तो तत्व निर्णय की बात है, तत्व विचार चल रहा है, वो तो सबसे उच्च प्रकार का पुण्य है। जो पुण्य का श्रद्धा में, श्रद्धा के लेवल पर निषेध कर रहे हैं, आचरण के लेवल पर नहीं। तो जो श्रद्धा में हम ऐसा लेते हैं कि पुण्य छोड़कर आत्मा में जाना योग्य है, ये शुद्ध भाव है कि शुभ भाव है? जो ऐसा विचार कर रहे हैं ना, पुण्य हेय है, वो क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं ना, ये उनका शुभ भाव चल रहा है, क्योंकि ये शास्त्र की बातें वो सोच रहे हैं, तो इसमें भी पुण्य ही हो रहा है। जो पुण्य को हेय कह रहा है उसके पुण्य बन रहा है। इसको पुण्य ने कुछ अन्य करना चाहता है, कोई क्रिया करना चाहता है, पर तत्व विचार ये सबसे उत्कृष्ट जाति का पुण्य है, सातिशय पुण्य कहेंगे उसको। पुण्य के लिए पुण्य नहीं है वो, क्योंकि वो तत्व विचार छूटकर ही जीव को आत्मा की अनुभूति होगी, अन्य किसी पद्धति से नहीं होगी। तत्व विचार करते 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 निर्णय पक्का हुआ, उसी समय आत्मा की अनुभूति हुई। जब तक निर्णय में कचास है, जब तक अन्य कहीं ना कहीं सुख बुद्धि पड़ी है, कहीं ना कहीं उसके देवत्वपने की बुद्धि है, कहीं ना कहीं उसके प्रति आदर बुद्धि विद्यमान है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के प्रति, तब तक उसको अभी वो कचास है, अभी निशंक नहीं हुआ है। अभी कहीं ना कहीं लगता है नहीं, ये भी सच्चा वो भी सच्चा, अभी बात आई ना विनय मिथ्यात्व की। तो इसीलिए हम यहाँ तत्वों का अभ्यास कर रहे हैं। सात तत्वों संबंधी जो विपरीत मान्यता है वो ख्याल में आती है, दोष ख्याल में आता है तो हम सही अंगीकार कर लेते हैं। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं निर्जरा तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता क्या है, क्योंकि शास्त्र पढ़कर ही ये विपरीत मान्यताएं चल रही है। सातवें अधिकार में कहा है ना, जो जैनी है जिना आज्ञा को मानता है फिर भी उसके सूक्ष्म मिथ्यात्व तो है, तो क्या पढ़ा उसने शास्त्र में? इच्छा निरोध तपा और तपस्या निर्जरा। तत्वार सूत्र में तो सूत्र है तपस्या निर्जरा, यानी तप के द्वारा निर्जरा होती है। तो हमने क्या मान लिया? ये बाह्य उपवास करेंगे, जितने उपवास करेंगे उतनी निर्जरा होगी। ये जो निर्जरा है वो संवर पूर्वक की निर्जरा की बात है। देखो हर समय क्या होता है, बंद होता है जीव को, यानी अनंत कर्म परमाणुओं का बंद होता है। अब जो पूर्व में सत्ता में जो कर्म पड़े हैं उसमें से अनंत परमाणु खिर कर निकल जाते हैं, क्योंकि उसकी स्थिति पूरी हुई है, वो फल देकर निकल जाते हैं। फल देकर स्थिति पूर्ण होने पर फल देकर जो उदय में आते हैं उसी को निर्जरा भी कहेंगे हम। वो मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है, उसको सविपाक निर्जरा कहेंगे। विपाक यानी फल, जो कर्म उदय में आने पर फल देकर खिर जाता है उसको कहेंगे सविपाक निर्जरा। ऐसी सविपाक निर्जरा अनादि से अब तक हो रही है, जितना बंद हो रहा है उतनी ही निर्जरा होती है, यह हर समय चल रहा है। हमारा स्टॉक तो उतना का उतना है, हम हमेशा वो टंकी का उदाहरण देखते हैं, फुल फुल है पानी से, जितना पानी आ रहा है नलों से उतना ही नीचे के नलों से जा रहा है। ऐसे ही हम बंद जितने अनंत परमाणुओं का करते हैं उतने ही अनंत परमाणु अपना अपना आठ कर्मों का उदय हर समय चल रहा है ना, अपना अपना फल देकर खिल रहे हैं। ये खिलते जाना उसको कहेंगे निर्जरा। कैसी? सविपाक निर्जरा। ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा नहीं है। अब मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, योग सब बाकी है और ऐसे जीव ने पुण्य किया तो क्या हुआ, अनंत परमाणु जो बनते उसको कहेंगे एक समय प्रबद्ध, उसमें अनंत होते तो एक समय प्रबद्ध का बंध हुआ, नया पुण्य किया हो। और पुराना क्या है, जो कुछ है जिसका उदय चल रहा हो, किसी का पुण्य का उदय होगा, पाप का होगा, जो कुछ है, संयोग कुछ भी हो सकते ना, तो उनका उदय होकर वो खिर रहे। कितना खिरा? एक समय प्रबद्ध। बांधा कितना? एक समय प्रबद्ध। खिर कितना गया? एक समय प्रबद्ध। उसको क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं, उसका स्टॉक तो जितना का उतना बना रहा। ऐसा कितने साल तक किया? तो कहते हैं करोड़ों भवन तक तप तपने पर भी जितनी निर्जरा होती कितनी होगी, एक समय में, एक समय प्रबद्ध, उतनी ज्ञानी के एक क्षण में होती है। कैसे? क्योंकि जब जीव समय दर्शन प्राप्त करता है, अंतरंग में स्थिरता बढ़ती है वीतरागता, तो उसको असंख्यात गुणा निर्जरा होती है। यानी एक समय प्रबद्ध जो कुछ बंधेगा, निर्जरा कितनी होगी, असंख्यात समय प्रबद्ध एक साथ खिलेंगे। वो कैसे होता है? अपकर्षण होता है, गुणश्रेणी रचना होती है, और गुणश्रेणी गुणित प्रमाण में, ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में, वो असंख्यात गुणा प्रति समय असंख्यात गुणा खिलता है। तो एक समय में असंख्यात समय प्रबद्ध खिलते हैं, दूसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, तीसरे समय में उससे असंख्यात गुणा, ऐसे लगातार चलता है। तो ज्ञानी के एक क्षण में जितनी होगी वो अज्ञानी करोड़ों भवन तक तप तपने से भी नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूस पुण्य तो कोई करेगा नहीं, एक अंतर्मुहूर्त उसकी लिमिट होती है, पुण्य के बाद कोई ना कोई पाप परिणाम आएगा ही आएगा, भले वो मुनि दीक्षा ले ले, कुछ भी करे, क्योंकि अब मिथ्याती है ना अभी, तो मिथ्या तो दशा में कैसा भी पुण्य करे तो उससे तो निर्जरा वो वाली कौन सी, ये मोक्ष मार्ग वाली निर्जरा होती नहीं, क्योंकि उसको संवर ही नहीं हुआ है। तो हर समय जितना जा रहा है उतना एक एक समय में जाएगा, उससे कुछ नहीं उसका भला होगा। तो इतना पुण्य किया उसका क्या फल? हाँ, उसके फल में उसको एकाध भव मिलेगा स्वर्ग का। वहां क्या मिलेगा? वैभव मिलेगा। मिथ्या तो बाकी है, वैभव से क्या होगा? मान बढ़ेगा, और वो वैभव को यानी विषयों को भोगने की इच्छा होगी, उस वो इच्छा है कि वो क्या है, विषयों को भोगने की इच्छा, इससे पाप है। और वहां से छूटने का प्रसंग आएगा, छह महीने पहले खबर पड़ जाती उनको कि अभी यहाँ अपना जाने का समय आ गया, इतना विलाप होगा, इतने संक्लेश परिणाम होंगे, वो एक इंद्रियों में जाके उत्पन्न होगा देव। पुण्य के फल में वहां गया, वहां सारी सुख सामग्री है, उसको भोगने की इच्छा, तीव्र लालसा उसको भोगने की, और उसके फल में जाके वहां पृथ्वी का एक में जन्म लेगा। और फिर एक इंद्रिय में एक बार गया है, फिर एक इंद्रिय में से एक इंद्रिय हो सकता है निगोद में अनंत काल चला जाए उसका। यानी उसको क्या मिला? वो भी बाह्य सामग्री में मिलता है जीव के। देखो, आठ कर्मों में से चार घाती कर्म तो पाप रूप ही है जो निरंतर बनते हैं। हम शुभ भाव कर रहे हैं तो भी ये तो बनते ही है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मौनी अंतराय, तो इसका बंधन रुकने से ही हमको संवर शुरू हो जाएगा। तो पहले में पहले ये इनमें से मोहनीय जो है ना, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनीय, मोहनीय का मिथ्यात् और अनंतानुबंधी पहले में पहले रुक जाएगा, तब शुरू होगा संवर। और वो कैसे होगा? सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर होगा। जैसे प्रकाश होने पर अंधकार का नाश होता है, वैसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होने पर मिथ्यात् और अनंतानुबंधी का नाश हो जाता है। नाश होता है ना, उदय में नहीं आता है। ये ज्ञानावरण दर्शनावरण तो ऊपर दसवें गुणस्थान तक बंधेंगे। मोहनी ही एक ऐसा है कि जिसका बंध उदय दोनों मिटेंगे। वो कैसा है? तो ये सात तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता है उसका नाश होने पर ये मिटेंगे। इसलिए ये सात तत्वों को जानना इतना जरूरी है। पूर्वी ने कहा था ना, हमको सात तत्व समझाओ, बहुत अच्छी बात है, ये पहले में पहले समझने लायक बात है। कि हम संवर निर्जरा तत्व को सही समझते हैं तो हमें मुनि का स्वरूप ख्याल में आता है, मोक्ष तत्व को सही समझते हैं तो हमको देव का स्वरूप ख्याल में आता है। तो हमने पहले देखा था कहीं लिखा है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन और कहीं लिखा है कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धानु सम्यक दर्शन, दोनों अर्थ एक ही है। तो अभी हम जो देख रहे थे निर्जरा तत्व संबंधी जो विपरीत मान्यता कि इच्छा निरोध तप का अर्थ क्या है, लोग क्या समझते है? इच्छा को दबाना निरोध करना वो तप है, इच्छा उत्पन्न ही नहीं होना वो तप है। तो इच्छा उत्पन्न ही नहीं होना ये कब हो सकता है कि जब वितरागता उत्पन्न होगी, अपने आत्मा के सुख का अनुभव होगा तो विषयों में सुख है ये बुद्धि नहीं रहेगी, तो बाहर से कुछ अच्छा चाहूं ये बात ही नहीं रहेगी। जो अपने घर में ही बहुत अच्छा सुखी है तो उसको बारंबार बाहर जाने की क्या जरूरत पड़ी, ख्याल है ना। तो ऐसे कहते हैं इच्छाओं का अभाव यानी इच्छा का उत्पन्न ही न होना निर्जरा है और वह कैसा है, सुखमय है। हम उल्टा समझ रहे हैं, इच्छा की पूर्ति करना इसमें सुख माना हमने, हमने जितने हम चाहे जो कर सकते हैं, इसका अर्थ क्या, चाहे ने इच्छा, जो इच्छा होती है हम उसकी पूर्ति करते हैं। खाने की इच्छा हो रही हमने खाया, फिर एसी की और ठंडा भोगने की इच्छा है हमने ठंडा भोग लिया, कुछ पीने की इच्छा है हमने पी लिया, घूमने की इच्छा हुई हमने घूम ले, तो देखो हम कितने सुखी है। यानी हमें इच्छा उत्पन्न होती ये दुख है यही मालूम नहीं इसको, जैसे खुजली वाला रोग वो खास खास करता है ना, तो उसका खुजाता है उसका रोग बढ़ता है उससे और उसको उसी में आनंद बांटता है, मानता है अपने को रोक नहीं सकता कि इतनी वो खुजली होती है तो खुजली होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है उसको, ऐसी ये बात है यहाँ। इच्छा का उत्पन्न होना यही दुख है, आकुलता है, टेंशन है ना ये। जब जीव पर पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है या तब उनके ग्रहण त्याग की इच्छा करता है, कोई अच्छा लगे तो इच्छा होती है उसको ग्रहण करने की, अकेले ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती, जो बुरा लगे उसको त्यागने की भी इच्छा होती है, इसको मैं दूर हटाऊं, इच्छा तो उसकी भी होती है। परंतु पर पदार्थ तो इष्ट या अनिष्ट होते ही नहीं, परंतु मिथ्यात्व के कारण यह जीव उन्हें इष्ट अनिष्ट मानता है। पर पदार्थ इसके अधीन परिणमित नहीं होते, क्यों नहीं होते, प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है और वो अपना जो परिणमन का क्रम है पर्यायों का उसके अनुसार वो परिणमन होते हैं। हम चाहते अभी ये वृक्ष को लाल पे पन्ने आए, हम चाहते उसको ग्रीन हो जाए अभी, अरे वो जो उसको पर्याय का क्रम है वैसा ही होगा ना। हम चाहते अभी उसको फूल आना चाहिए परंतु हम आप कहेंगे ना अभी उसका सीजन नहीं फूल आने का, तो हम चाहते हैं कुछ और पर पदार्थ परिणमते हैं अपने पर्याय क्रम से, क्योंकि वे स्वतंत्र वस्तु हैं। कदाचित कोई इच्छा पूर्ण हो गई तो भी क्या होगा और नई इच्छा उत्पन्न होगी। हमें भूख लगी है, खाने की इच्छा हुई, भोजन करने बैठे तो चटनी खाने की इच्छा हुई, वो खाए तो और फिर चटनी खाओ ना, नहीं फिर कुछ मिठाई भी चाहिए, मिठाई खाने की इच्छा, फिर कुछ जूस चाहिए उसकी इच्छा हुई, पापड़ भी चाहिए। खाते खाते तो ठीक है परंतु एक भोजन की इच्छा पूरी नहीं होती तब तक 10 इच्छा और उत्पन्न होती है क्या, अभी भोजन करने में थोड़ा लेटना है, थोड़ा आराम करना है और फिर कहीं बाहर जाना है, घूमना है, मुझे ये खरीदी करना है वो खरीदी, यानी उसकी इच्छाओं का कभी अंत ही नहीं होता है, तो 10 इच्छाएं और उत्पन्न होती है और यह जीव हमेशा ही आकुलता का वेदन करता है। देखो प्रवचन सार में तो ऐसा लिखा है, जिस समय में इच्छा उत्पन्न हुई उस समय में तो उसकी पूर्णता नहीं है, क्यों, अगर पूर्णता होती तो इच्छा होती नहीं। इच्छा हुई भोजन करने की और भोजन तैयार है, फिर भी थाली पर लगाकर भोजन करने में 2-4 मिनट 5 मिनट तो जाएगा ना, तो उसके उतने समय तक तो उसकी इच्छा चलती रही। अब हम कहेंगे इच्छा पूर्ति हुई, पर जब समय इच्छा पूर्ण हो रही है, खाना खा रहा है, तभी उसी समय अन्य इच्छा उत्पन्न हो रही है, तो उस इच्छा से वो आकुलित ही है। तो जब तक पूर्ण वितराग नहीं होता है तो उसकी आकुलता बनी रहेगी, ऐसा कहते। तो ये कौन कौन सी इच्छा होती है और उसके क्या कारण है? तो पांच प्रकार के इंद्रियों के विषयों की इच्छा मूल कारण है मिथ्यात्व। फिर चार कषाय क्रोध मान माया लोभ, ये ऐसा भी है ना। एक तो होता है पंचेंद्रियों की विषयों की इच्छा होती है, और दूसरा कषायों के कारण किसी का भला करूं बुरा करूं ये भी इच्छा है। कोई क्रोध है, कोई मान है, मान से क्या चाहता है दूसरों को नीचा दिखाऊं, ये इच्छा होती है, ये कषायों की इच्छा होती है। उसके लोभ में कुछ पैसा कमाओ ये इच्छा होती है, माया में ठगा कर किसी का पैसा हट लो ये इच्छा होती है, तो ये भी कषायों की भी इच्छा रहती है। तो चार प्रकार की कषाय जो है क्रोध मान माया लोभ, उसके भी मूल में क्या है मिथ्यात्व। बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना की कल्पना करता है, ये अच्छा है ये बुरा है ये सोच लेता है, मूल कारण है मिथ्यात्व। देखो विषय कषाय की इच्छा मूल कारण मिथ्यात्व, चार कषाय होते हैं मूल कारण मिथ्यात्व, और दूसरा क्या देखा अभी हमने, इष्ट अनिष्टपना लगता है मानता है उसका भी मूल कारण है मिथ्यात्व। तो जब तक मूल कारण जो कायम है, हमने देखा ये आपके यहाँ हरिकेन आया और वृक्ष बड़ा इतना वृक्ष टूट गया, और इस साल हमने देखा तो उसमें कितने फिर से वो हरा भरा दिख रहा है, आप ही ने बताया ना क्या कारण है उसका, उसका मूल अंदर पड़ा है, फिर वो बड़ा हो जाएगा पनपेगा। ऐसे ही जब तक मूल कारण मिथ्यात्व कायम है तब उसके कार्य रूप क्या है, फल इच्छा उत्पन्न होना, कषाय उत्पन्न होना और इष्ट अनिष्टपना की कल्पना, ये तीनों ही रहेंगे। आपने पूछा था है संवर कैसे होगा, आश्रय का अभाव कैसे होगा, तो उसका मूल कारण मिथ्यात्व है। जब तक वो रहेगा तो ये आश्रय उत्पन्न होते ही रहेंगे, इच्छाएं भी होगी यानी विषय की, इसको कहते हैं विषय कषाय, विषय का अर्थ है विषयों की इच्छा, और कषाय ने क्रोध मान माया लोभ, और बाकी उसका मूल कारण तो मिथ्यात्व है ही है, मोह राग और द्वेष। मन की इच्छा और कषाय बाह्य में प्रकट न हो उसे दबाकर रखे यह उसके नाश का उपाय नहीं है। इसको गुजराती में कहते रुंधाय लो कषाय, दबा दिया हमने बाहर नहीं दिखा दिया, अंदर तो देखो या कोई मालिक है वो सेवक को बहुत डांटता है तो नौकर है वो तो गुस्से से लाल पीला हो जाए, बाहर नहीं दिखाएगा, बाहर तो क्या कहें यस सर, और मन में क्या हो रहा है, मन में तो वो बहुत क्रोधित है बाहर नहीं दिखा रहा, तो क्या वो शांत है क्या क्या है, वो तो बहुत अशांत है। तो कहते ही वो उसको दबाकर रखना ये नाश का उपाय नहीं, परंतु इच्छा और कषाय उत्पन्न नहीं हो ये उपाय करना ही सच्चा उपाय, और वो उत्पन्न नहीं होने को यहां नाश होना कहते हैं, तब उसको कहेंगे हम उसको रोक दिया। मूल कारण मिथ्यात्व को नष्ट करना यही सच्चा उपाय है, तब हम कहेंगे इसने राग द्वेष का नाश कर दिया। कर्म की अपेक्षा कथन करना हो तो बंध का एक देश अभाव, देखो ऑलरेडी कर्म बंधे हैं, बंधने के बाद तो वो उदय आए तभी खिर जाएंगे। अब ये निर्जरा ऐसी निर्जरा है जो वितरागता के कारण होते हैं कि बंधने के बाद अधिक मात्रा में खिर जाते हैं। तो जितना बंधा है ना सत्ता में पड़ा है उसका पार्शल नाश होना उसको निर्जरा कहेंगे, पूर्ण नाश होने को तो मोक्ष कहेंगे, ख्याल में ना। एक देश है ने पार्ट ली उसका पार्ट, तो जो बंध का अभाव होना कुछ अंश में अभाव होना उसको कहेंगे निर्जरा। अब इस जीव ने क्या मान रखा था पहले, बंध अच्छा है, कौन सा पुण्य बंध, तो बंध को जिसने अच्छा माना है वो निर्जरा को अच्छा कैसे मानेगा, तो उसकी वो निर्जरा तत्व संबंधी भी भूल चलती रहे, हमने पहले भी देखा था। पुण्य कर्म के बंधन में जिसे सुख बुद्धि होती है, क्यों, क्योंकि उसके फल में सुख बुद्धि है ना, संयोगों में सुख बुद्धि है, संयोग क्यों प्राप्त हुए, अरे हमने पुण्य किया था, तो पुण्य किया तो क्या किया था, हमने बंध अच्छा किया था, तो ये बंध के फल में हम सुख भोग रहे हैं, यानी बंध के फल में जिसको सुख की बुद्धि है, बंध के फल स्वरूप मैं सुखी हूं ऐसा जो मानता है वो निर्जरा के उपाय को दुख रूप माने बिना नहीं रहेगा, क्यों? वहां तो हम कहेंगे निर्जला चाहते हैं, हाँ चाहते हैं। देखो हाँ, आपने इतना सारा 10 दिन 8 दिन जो कोई पर्यूषण में पुण्य किया है वो सारा खिर जाएगा, बिना फल दिए चलेगा? कौन चाहता है इसे निर्जरा भाई? पुण्य से निर्जरा होते हम मानेंगे, आपकी बात मानने के लिए हम तैयार हैं। आपने जितना पुण्य किया है ना, अभी पर्यूषण में तो पुण्य करने वाले हो कि नहीं, तब करेंगे सब। हम कहेंगे इस सब की निर्जरा होगी बिना पुण्य फल दिए, चलेगा कि नहीं चलेगा? हम तो पाप की निर्जरा चाहते हैं, पुण्य की कोई नहीं चाहता है। पुण्य को तो हम भोगेंगे। ऐसा भी कहते, अरे इतना पुण्य किया और फिर भोगे बिना चला जाएगा? जो चरम शरीरी होता है, सम्यक दृष्टि जीव जन्मा है, मनुष्य है, और वो क्या करता है मालूम है? हर समय देव गति बांध रहा है। उस भव में वो आयु तो बांधने वाला नहीं है, आयु बंधेगी तो उसको भव बढ़ेगा। जो चरम शरीरी है उसी भव में मोक्ष जाने वाले है, वो जीव जो है मनुष्य है, सम्यक दृष्टि है, हर समय एवरी समय देव गति बांध रहे। कब तक बांधेगी? 8वें गुणस्थान तक। तो लोग पूछते हैं, वो तो मनुष्य गति में ही वो मोक्ष जाने वाला है, इतनी देव गति बांधी, उसका क्या फल, उसका क्या फायदा?
भोगे
भी ना चले। कितना उच्च प्रकार का पुण्य बांधता होगा उस भव में वो जीव, वो सारा पुण्य खिर जाएगा ना, क्या लेके जाएगा साथ में? तो उसमें जिसको सुख बुद्धि है वो पूछते भी है, उसका क्या फायदा फिर इतना बांधा? अरे फायदे के लिए थोड़े, वो भोगने के लिए थोड़े, वो सहज बन जाता है। और उसकी भी निर्जरा होगी तब वो ऊपर के गुणस्थानों में जाएगा। जब श्रेणी मानता है तो पुण्य पाप सभी की निर्जरा करके जाएगा ना वो, उसके बिना मोक्ष कैसे होगा इसको? तो हम ये सोचते नहीं है पुण्य से निर्जरा होगी, निर्जरा होगी, काहे की निर्जरा होगी? पुण्य का बंध भी होगा और पुण्य की निर्जरा भी होगी, अच्छी बात है। हम तो कहेंगे पुण्य करते रहो, परंतु पुण्य भोगने को नहीं मिलेगा, सब खिर जाएगा। तो देखो कौन कौन करना चाहता है। हमने निर्जरा का स्वरूप नहीं समझा ना, इसलिए सब बातें ऐसी होती। ये निर्जरा तत्व संबंधी उल्टी मान्यता चलती है। तो जिसने पुण्य कर्म के बंध को अच्छा माना है वो निर्जरा को दुखमय माने बिना नहीं रहेगा, क्योंकि बंध है तभी तो हम भोग सकेंगे। अब खिर जाएगा तो कौन भोगेगा उसको? जीव दुखी होता है स्वयं ने ही बांधे हुए पूर्व कर्म के फल से। अब ये निमित्त की बात है, पूर्व कर्म का फल वो भी निमित्त में लेना है। जीव क्यों दुखी है? अपने राग द्वेष के परिणाम से। फिर भी निमित्त को देखना है तो हम किसको देखेंगे? पूर्व कर्म के फल से वो दुखी है। और क्या मानता है? अन्य पदार्थ मेरे दुख का कारण है मानता है। क्या करे, बच्चा मेरा मानता नहीं इसलिए मैं दुखी हूं, या कोई कहता है मेरी शादी नहीं होती इसलिए मैं दुखी हूं, अन्य अन्य ऐसे जो किसी को, कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं इसलिए मैं दुखी हूं। तो अन्य पदार्थों को दुख का कारण मानकर उन पदार्थों के नाश का उपाय करता है, उसको दूर हटाने का उपाय करता है, परंतु कर्म के नाश का उपाय नहीं करता। नहीं समझे ये दुखी क्यों है? कर्म के कारण। क्या मानता है? नहीं ये ऐसा, ये बेंच रखा है ना इसलिए मैं दुखी हूं। क्या करेगा? इसको हटाओ। अभी जो कुछ है, ये जो ये घर ऐसा बांधा है ना इसलिए मैं दुखी हूं, फिर उसको सीधा बांधने का प्रयत्न करता है, परंतु कर्म के नाश का उपाय नहीं करता। ये घर का जो इधर का उधर बांधने से इसके कर्म भी हट जाएगी कि नहीं? इधर से उधर वो तो कुछ उपाय नहीं करता, फिर वो फेंग शुई करेगा, कुछ कुछ करेगा, तो उसके इसके कर्म भी पलट जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? ये सही सोचता भी नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं। यानी ये जो निर्जरा तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है, ये विपरीत मान्यता के कारण ही स्वयं दुखी है। जीव मोह राग और द्वेष के कारण दुखी है। मोह ने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व ने हम जो देख रहे हैं 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, ये कल्पना में दुखी है। वो कल्पना सही करो तो सुखी होगा, यानी इतनी आसान बात है। अब हम मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता देख लेते हैं। मोक्ष अर्थात पूर्ण निराकुल सुख, अनंत सुख की प्राप्ति, कर्मों की बात देखना है तो कर्मों का पूर्ण अभाव, नाश, क्षय, सभी आठों कर्मों का, आत्मा की परिपूर्ण शुद्ध दशा, आत्मा अनंत गुण में है, उन सभी अनंत गुणों का सामर्थ्य, गुणों में तो सामर्थ्य होता है और पर्याय में वो प्रकट होता है, तो जितना सामर्थ्य है वो परिपूर्ण रीति से पर्याय में प्रकट होना, उसको हम कहेंगे मोक्ष। अरिहंत भगवान को भी चार जो है ना गुण, ज्ञान है, दर्शन है, वो श्रद्धा, चारित्र, वो सब, और पांच वो जो अंतराय संबंधी, उन सभी गुणों का सामर्थ्य परिपूर्ण रूप से प्रकट हुआ है, फिर भी चार अघाती जो है उसमें जो सूक्ष्मत्व, अव्यबाधत्व आदि उसका भी प्रकट नहीं हुआ, वो भी प्रकट हो जाएगा तो हम कहेंगे ये सिद्ध हो गए। और कर्मों की भाषा में बोलना है तो कहेंगे इन सभी कर्मों का नाश हो गया, अभाव हो गया, क्षय हो गया, तो उसी को कहते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या है? जीव की अवस्था है। कैसी अवस्था है? परिपूर्ण शुद्ध अवस्था है। वो कहां से प्रकट हुई? जैसा स्वभाव है वैसे इनको प्रकट हुई है। और मिथ्या दृष्टि क्या मानता है? उसने तो पांच इंद्रियों के विषय में ही सुख माना है और उसने ऐसा सुख समझा है, अरे मोक्ष है ना, वो समझता है मोक्ष नाम की कोई प्लेस होगी, कहता है मोक्ष में बहुत सुख है। कैसा सुख मान लिया? उसने तो पंचेंद्रियों के विषय में सुख माना था, ऐसे ही इसी क्वालिटी का सुख वहां होगा ऐसा मानता है। ये उसके मोक्ष तत्व संबंधी भूल चल रही है, यानी ये जो विषय भोग करने में सुख मानता है परंतु विषय भोग पर पदार्थ को क्या भोगेगा? उसका तो इच्छा हो रही है तो इच्छा में ही वो सुख मानता है। नहीं समझे? भूख लगना ये क्या है? दोष है क्या? गुण है, दोष, क्योंकि हमने देखा अरिहंत भगवान में ये दोष नहीं होते, 18 दोषों से रहित है। क्या? न उनको भूख लगती है, न प्यास लगती है, न जन्म है या मृत्यु है, न कुछ बुढ़ापा है, अरे उनको नींद भी नहीं है। तो डॉक्टर आपके पास ज्यादा पेशेंट कौन से आते हैं? जो भूख नहीं लगती और नींद नहीं लगती है ना, नींद नहीं आती है। क्या हमने उसको दोष समझा? क्या नहीं समझा? भूख नहीं लगे तो हम चिंतित हो जाते, अरे हमें भूख क्यों नहीं लगती, अरे हमें नींद क्यों नहीं आती है। कोई ऐसा नहीं सोचता है कि नींद नहीं आती तो चलो अच्छा है ना, तत्व का चिंतन होगा। लेटे लेटे दो घंटे तत्व चिंतन करते जाओ बेड पर, नहीं नींद आती तो क्यों चिंता करते? तो हम चिंता किसकी करते
हैं?
बाजू वाला सो रहा है, मुझे नींद नहीं आती। हाँ, देखो अभी इसको देखते हैं, अभी दो मिनट है। देखो यानी हम तो पदार्थों को भोग ही नहीं सकते हैं, पदार्थों को जानते हैं। हम क्या कहते हैं? हमने लड्डू का भोग लिया। लड्डू का क्या भोग लिया? लड्डू के रसगुण को जाना। हमने और क्या किया?
रात को ही भोगा।
तो पर पदार्थों का कोई ग्रहण या त्याग कर ही नहीं सकता, उसको जान सकता है। और ये मानता है कि ये लड्डू यहां से यहां गए तो मैंने उसका भोग कर दिया, मैंने खा लिया उसका। और अज्ञानी क्या करता है? निरंतर ग्रहण की या त्याग की इच्छा करके आकुलता करता है। इच्छा ही आकुलता है और उसके निरंतर कुछ ना कुछ करने की इच्छा है। ऐसा भी कहता है मोक्ष में कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं करना तो क्या फायदा? तो कुछ करने में सुख है, ये करने की इच्छा है ना, ये भी इच्छा है, ये आकुलता है। और ये ऐसी आकुलता वहां नहीं होती ऐसे कहेंगे तो उसको वो नहीं करने की उसमें आकुलता लगती है। कुछ नहीं करना तो हम क्या करेंगे? यानी हम कुछ कर सकते हैं पर पदार्थों को और करना चाहिए, उसी में हम सुखी है, ये इसकी मान्यता है। यानी पूर्ण इच्छाओं का सब अभाव है, वही निराकुलता है और वही वितरागता है और वही सुख है, इस बात का उसे पता नहीं है, यही उसकी मोक्ष तत्व संबंधी विपरीत मान्यता है। और भी आगे इस संबंधी जो कोई चर्चा है हम करेंगे। लो जो ईश्वर भगवान की